आप देखिए कि आयत नंबर 17 से जो है फिर वाक्या शुरू होता है, और ये वाक्या क्यों शुरू किया गया? इसलिए ये वाक्या जो है वो शुरू किया गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना तसल्ली दी जाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर थे, और वाक्यात सुनाकर आपको तसल्ली देना, सब्र करना जो है, इसकी नसीहत करना मकसूद है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनका वाक्या अल्लाह ताला सुनाते हैं। इस बिर किसे कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो हैं वो इस बिर कीजिए। और गोया के तमाम अहले ईमान से कहा जा रहा है कि आप सबर कीजिए, और सबर करने के लिए जो है वो क्या है, अला मा यकूलूना, जो कुछ वो कहते हैं, जो भी इनका रवैया है, जो इनकी अज़ियतें हैं, या आपको साहिर और कज़ाब कहना, और इसके अलावा आपको कहना कि इख्तिलाक आपने तो घड़ लिया है, या फिर उनका ये कहना कि लशैन उजाब, ये तो बड़ी अजीब चीज है। और आज भी अगर कुरान की दावत को, इस्लाम की दावत को आप सही अंदाज में पेश करें तो लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, आप अपने दोस्तों के दायरे से आपको निकाल देते हैं, और फिर जीना वाकई ऐसे लगता है कि शायद बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्या करें ना। तो आप सोचे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और अहले मक्का का इनकार और आपको सताना, तो कहा इसबिर अला मा यकूलूना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो लोग ये बातें बनाते हैं ना, ये जो बकवास करते हैं, इस पे आप सब्र कीजिए। वज़कुर अब्दना, और जिक्र कीजिए और किस्सा बयान कीजिए अब्दना, हमारे बंदे का। बड़ा खूबसूरत अंदाज है, और मेरा तो बस ऐसा दिल हो जाता है ना कि अल्लाह ताला जिन लोगों के बारे में कहते हैं अब्दना कि वो हमारे बंदे थे, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह की तरफ से इस बात का ऐलान हो कि अब्दना हमारा बंदा। तो किसी की इससे बढ़कर तारीफ और तौसीफ क्या हो सकती है कि अल्लाह ने इंसानों में से कुछ इंसानों को अपना बंदा कहा। पीछे भी आपने सूरह सफात में पैगंबरों के बारे में ये पढ़ा, और यहाँ पे भी अब्दना हमारा बंदा था। अच्छा आप देखें कि अहले मक्का बशरियत की वजह से पैगंबर का इनकार कर रहे हैं, और अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो मेरा बंदा था, आका मालिक नहीं था, खुदा नहीं था, कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं था, मफोकल फितरत नहीं था, अब्दना हमारा बंदा था। दाऊद अलैहिस्सलाम, जल ईद, ईद जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईद जो है इसके क्या मानी है। जैसे कभी ये लगता है कि ये यद की जमा है, तो यद तो हाथ को कहते हैं, मुफस्सरीन कहते हैं ईद ये यद की जमा नहीं है, बल्कि ये आदा यईदू का मसदर ईदुन है, ये कुव्वत और शिद्दत, इसी ये ताईद देता है, तकवियत करता है, और यहाँ पे मतलब है ईदुन जो है कुव्वत और शिद्दत के मानी में है और तकवियत के मानी में है। और कुव्वत और तकवियत से मुराद कौन सी कुव्वत है? तमाम मुफस्सरीन ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत में कुव्वत और हिम्मत मुराद ली है। आमतौर पे फौरन ही जब आप इसको पढ़ते हैं तो क्या सामने आता है कि हाथों वाला, और फिर इससे कुव्वत और ताकत मुराद ली जाती है। और मुराद क्या है कि जिस्मानी कुव्वत भी हो सकती है, मसलन बचपन में आप बकरियों का रेवड़ चराया करते थे, जब कोई दरिंदा हमला करता बकरियों पर, आप इसके एक जबड़े को पकड़कर दूसरे को इस जोर से खींचते थे कि चीर कर रख देते थे दरिंदे को, और ये आपकी जिस्मानी कुव्वत ही थी कि आपने किसको मारा था, जालूत को मार डाला था, तभी तो बनी इसराइल की आंखों का तारा बने थे ना। तो बाज लोग क्या कहते हैं कि फौजी सियासी कुव्वत और ये जो आपके अंदर बहादुरी थी, दिलेरी थी, ये भी मुराद हो सकती है। ये मानी भी लोगों ने लिए हैं कि आपने गिर्दो पेश की, मुशरिक कौमों को शिकस्त दी, एक मजबूत इस्लामी सल्तनत कायम की, आपने जालूत को मार डाला। लेकिन अक्सर तकरीबन तमाम मुफस्सरीन ने यहां जो है जल ईद से मुराद जो है कौन सी कुव्वत ली है, इबादत की कुव्वत। वैसे तो आपकी कुव्वत का क्या हाल था कि लोहा आपके हाथों में नरम हो जाता था, आप मेहनत करते थे, अपने हाथ की मेहनत से खाते थे, तो एक ये भी है, ये तो अल्लाह ताला ने आपको अता किया था। और दूसरा क्या है कि वो जो थे वो इबादत में बड़ी मेहनत करने वाले थे, और इनकी इबादत में जो मेहनत का हाल है ये हमें कैसे पता चलता है? मसलन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और सबसे ज्यादा पसंदीदा रोजे दाऊद अलैहिस्सलाम के रोजे हैं। वो आधी रात सोते, एक तिहाई रात इबादत करते और फिर रात के छठे हिस्से में सो जाते थे और एक दिन रोजा रखते और एक दिन अफ्तार करते थे, और जब दुश्मन से मुकाबला इनका होता तो फरार इख्तियार न करते थे और बिलाशुबा वो अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। अच्छा, इबादत के इस तरीके में क्या है? ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा है ये इबादत का तरीका, लेकिन इसमें मुशक्कत बहुत ज्यादा है। मसलन आप देखें, एक दिन रोजा रखना और एक दिन ना रखना, मसलसल एक हफ्ते के रोजे रखना आसान है, तबीयत उसकी आदी हो जाती है, लेकिन अब क्या है कि एक दिन रखें और कल नहीं रखना तो अगले दिन ये जो नफ्स है ना, ये राजी नहीं होता, फिर 100 बहाने, फिर 100 हीले, फिर यानी एक दिन तो नींद की आदत हुई थी, अब दूसरे दिन फिर नफ्स मचलने लगता है, टांगे पसारता है कि नहीं नहीं अब तो वही गहरी नींद का वक्त है। तो एक दिन रोजा रखना और एक दिन ना रखना, तो इससे क्या है, इससे इंसान जो है अपने नफ्स के हकूक, अपने घर वालों के हकूक ज्यादा अच्छी तरह अदा कर सकता है। लेकिन मुसलसल रखना आसान है, नफ्स उसका आदि हो जाता है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनकी इबादत का तरीका जो था वो क्या था, कि वो क्या करते थे कि इबादत जिस तरह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने की, इसने वो बड़ी कुव्वत और बड़ी हिम्मत के साथ जो थे वो काम लेते थे। तो अब आप देखिए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नमूना पैगंबर के लिए पेश किया जा रहा है और अहले मक्का के लिए। पैगंबर के लिए क्यों पेश किया जा रहा है कि आप जो हैं कैसे तसल्ली हासिल करें, आप कैसे ताकतवर बने, आप कैसे जल ईद बने, आपके अंदर हिल्म और तहमुल कैसे पैदा हो लोगों के नागवार रवैयों पर, और वो क्या है कि आप जो हैं इबादत में जो है वो इबादत से काम करें और फिर सब्र अपने अंदर पैदा करें। और आप तो थे ही साबिर, और अहले मक्का जो थे उनके लिए क्या है कि वो बड़े अमीर थे, बड़ी दौलत थी उनके पास, और इस वजह से वो मगरूर हो गए और वो फिर अल्लाह की तरफ झुकते नहीं थे। तो अहले मक्का से कहा जा रहा है कि मेरे दाऊद को देखो कितना अमीर था वो, इसके बावजूद मुसलसल मेरी तरफ झुकने वाला था, बराबर मेरी तरफ मतवजो रहने वाला था। तो वज़कुर अब्दना दाऊद अज़ल ईद इन्नहु अवाब, बेशक वो अवाब थे। तो अवाब जो है इसके मानी क्या है? अवाब का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है झुकने के लिए, और आप देख लीजिए कि ये लफ्ज जो है अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, और मोमिनीन के लिए भी ये लफ्ज अल्लाह ताला ने अवाब का जो है वो इस्तेमाल किया है। तो इसके मानी क्या है कि लौटना, रुजू करना, के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ बड़े रुजू करने वाले बंदे थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अवाब के मानी पूछे तो आपने फरमाया अवाब वो है जो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से मगफरत का तालिब हो। अच्छा, और अवाब कहते हैं कि अपने इरादे से बकसरत रुजू करना, जानते बूझते जो है वो रुजू करना। तो ये थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सिफत। अब अवाब जो है ना, आगे इसका जो है वो इसकी मिसाल दी जा रही है कि कैसे अवाब थे। इन्ना सखरनल लैल, इन्ना सखरनल जिबाला, बेशक हमने मुसखर कर दिया पहाड़ों को, जबल की जमा जिबाल है, पहाड़ों के लिए आता है, कि पहाड़ों को हमने मुसखर किया था, कि हमने पहाड़ों को ताबे कर दिया था माहू उसके साथ। अब आप देखें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं, जब वो अल्लाह की तरफ रुजू करते थे और अल्लाह की तस्बीह करते थे और वो जो कुछ करते थे तो पहाड़ भी उनके साथ उनके ताबे थे। यूसुफ बेहना वो तस्बीह करते थे। और यहां पर जो है वो क्या बात बताई जा रही है कि ये जो तस्बीह थी, ये जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे, वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो तस्बीह करते थे, तो पहाड़ क्या करते थे, युसब बेहना वो तस्बीह करते थे बिल अशी, और अशी का लफ्ज जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और अशी उनके मानी होते हैं जोहर के बाद से अगले दिन सुबह तक का वक्त, बीच में कोई वक्त भी हो सकता है ना। तो इसी से इशराक के मानी सुबह का वक्त जिसमें धूप जमीन पर फैल गई हो, ये लफ्ज भी आता है आगे, इशराक शरक से है ना। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो अल्लाह की तस्बीह करते थे, सूरत अंबिया और सूरत सबा में आप इसकी तफसील पढ़ चुकी हैं, और यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं, और अल्लाह ताला को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्बीह इतनी पसंद थी कि वो फितरत के मनाजिर को देखें कि वो इस तरह से अल्लाह को याद करते थे कि कायनात भी आपके साथ हो जाती थी। और खास तौर पे यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है पहाड़ों का, और ये तस्बीह जो थी यानी सुबह शाम से मुराद क्या है, जो तस्बीह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम किया करते थे इससे मुराद क्या है, हर वक्त वो तस्बीह करते थे, यानी औकात मुकर्रर कर लिए थे ये भी हो सकता है, और हर वक्त तस्बीह करते थे। वह तैरा माशूरा, तैर इसम जिन्स है, और परिंदे जो थे, माशूरा यहाँ पे मजमुआ के मानी में है, मजमुआ मजमुआ के मानी क्या है, जमा हो जाते, परिंदे भी जमा हो जाते, कुल्लहू अवाब, सब के सब इसकी तरफ रुजू करते, सब इसके जेरे फरमान रहते, इसके माने क्या है। बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो बयान की है, और मानी क्या है कि जब कोई मेरा हो जाता है तो कायनात भी उसकी हो जाती है। वो मेरा बंदा था, वो मेरी याद करता था, वो मुझे याद करता था, और मैंने पहाड़ों को और परिंदों को उसके तहत कर दिया था, कि जब वो मुझे याद करता तो वो इस तरह से याद करता कि बाकी सब भी उसके साथ जो थे वो शामिल हो जाते। कैसी खूबसूरत बात है ना, कैसी खूबसूरत बात है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है वो बयान की है, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह की तस्बीह करते तो पहाड़ भी उसके साथ शामिल हो जाते। कभी आप किसी कारी की बहुत अच्छी तिलावत सुन रहे हो, आप भी साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, दिल चाहता है मैं भी साथ पढ़ूं, बेखुद होकर, प्लानिंग नहीं कर रहे होते आप, आपकी आवाज भी वैसी नहीं है, आपको आती भी कोई नहीं है, मुझे भी नहीं आती, लेकिन खुद ब खुद मैं साथ गुनगुनाने लगती हूँ ना, जैसे आप किसी के साथ जो साथ देना शुरू कर दें। तो आपकी जबूर की किरात सुनकर हवा में परिंदे रुक जाते, हवा में परिंदे तो उड़ने वाली चीजें, हवा में जमा हो जाते, और इनके साथ अल्लाह की तस्बीह करते, और पहाड़ जो जमी हुई ठोस चीज है वो चलना शुरू कर देते, कुल्लहू अवाब, वो सब आपके जो थे वो आपकी तरफ रुजू करने वाले थे। वशददना, और हमने मजबूत किया, मुल्कहू उसकी हकूमत को, और क्या चीज मजबूत की, मुल्क से मुराद है कि रूहानी मादी हर तरह के जो असबाब है ना वो आपको अता किए अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला ने जो है क्या मुराद है, कि अल्लाह ताला ने जो है वो आपकी हुकूमत जो थी वो उसको मजबूत किया, आपकी बादशाही जो थी वो उसको मजबूत किया। शदद ना कुवत के लिए भी इस्तेमाल होता है, किसी की मजबूती के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे कहते हैं शददना का लफ्ज आया कुवत और सौलत के लिए, सौलत कुवत और सौलत मजबूती के लिए मुराद ये है, जैसे पीछे जुलैद आया है ना, और यहाँ पे क्या है कि हमने उसकी हकूमत खूब मजबूत की थी, वातैनाहुल हिकमता, और हमने उसको हिकमत अता की। हिकमत क्या है, हिकमत कहते हैं आप पीछे भी पढ़ चुकी हैं, एक इसके मानी नबूवत के हैं, नबी बड़ी हकीमाना बातें करता है, दूसरे इसके मानी क्या है, किसी की राय का साहिब होना। देखिए किसी भी चीज के बारे में बहुत सी राय होती हैं, लेकिन असाबते राय, राय का साहिब होना, राय का ठीक मौके की मुनासबत से होना, ये कुछ लोगों की होती है ना। आप पीछे पढ़ चुकी हैं कि वो दौड़ते आई थी, मैंने आपको वाकया सुनाया था, और दोनों औरतें कह रही थी, छोटा सा बच्चा था, और वो कहती थी ये मेरा बच्चा है, क्योंकि एक के बच्चे को कोई दरिंदा खा गया था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसले की बजाय अल्लाह ताला ने क्या किया था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया था ना, आपने उनको भी हिकमत बड़ी अता की थी, तो वो ज्यादा पसंदीदा था, है ना। और ये वाक्य आप पीछे ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि हमने इनको हिकमत अता की। नबी तो थे ही, बात बड़ी अच्छी करते थे, और फिर ये जज भी थे, और फिर क्या है कि बाज कहते हैं कि इससे मुराद कौले सद्दाद है, बात बिल्कुल नपी तुली ठीक बात करना, कौले सद्दाद, कौले सदीद। और बाज कहते हैं कि इससे मुराद है आपके अच्छे अमल, फेले सवाब। तो बहरहाल जो बात है वो क्या है कि अल्लाह ताला ने उनको हिकमत, दानाई, अक्लो फहम की दौलत जो थी वो बख्शी थी। और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जो है ना, उनको भी अल्लाह ने बड़ी हिकमत अता की थी, उनको भी बड़ी हिकमत अता की थी। और कहते हैं कि एक दफा हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम जो थे वो हजरत दाऊद के पास आए और देखा कि लोहे की जिरह बना रहे हैं। और कहते हैं कि मैंने चाहा कि एकदम पूछूं कि ये आप क्या कर रहे हैं, एक नई चीज थी, लोहा नरम हो रहा है हाथ में और बनाते जा रहे हैं, लेकिन खामोश बैठे रहे। और जब वो फिर आपने बना ली, पहन कर उठकर खड़े हुए, तो फिर बताया कि ये ऐसा लिबास है, तो फिर जो है वो बड़े खुश हुए। तो कहते हैं कि बनाते देखकर फौरन चाहा कि सवाल करूं, लेकिन सवाल नहीं किया। तो खामोश रहना भी हिकमत है, ये भी दानाई की बात है कि ऐसे ही बड़बड़ करना और एकदम बात करना, थोड़ा सा अगर आप चुप करें तो थोड़ी देर बाद वही बात सामने आ जाती है जो हमने बहुत जल्दी चाहा कि हमें उसका जवाब मिल जाए ना। तो किसी ने लुकमान अलैहिस्सलाम से पूछा था आपने हिकमत कैसे सीखी, तो उन्होंने कहा कि खामोश रहकर, खामोश रहकर जो है मैंने हिकमत सीखी। बहरहाल तो हमने उसको हिकमत भी अता की थी। अच्छा, ये भी हिकमत होती है कि एक तो होता है ना मुनासिब फैसला करना, ये भी हिकमत होती है, मुनासिब वक्त पर फैसला करना। बाद लोग फैसला तो कर लेते हैं लेकिन देर बहुत लगा देते हैं, उससे बाजू का वक्त बहुत गुजर चुका होता है। मुनासिब वक्त पर मुनासिब डिसीजन लेना, वालदेन, कायदीन, तहरीकों के जिम्मेदारान, मुसलमानों के लीडर, जर्नैल, इन सब की जिम्मेदारी होती है कि मुनासिब वक्त पर मुनासिब डिसीजन ले लिया जाए। वह फसल खिताब, वह फसल खिताब। और फिर इसके बाद क्या फरमाया, और फैसला बात का। फसल के वैसे मानी तो होते हैं अलग करना, फसले अव्वल, फसले दोम, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, इसी से फासला भी है, यानी काटना। हक को बातिल से जुदा करने वाला कलाम यहां मुराद है। खिताब खतबा से है ना, हक को बातिल से जुदा करने वाला कलाम, दो टोक बात। तो मुराद क्या है, दो टोक बात। फसल खिताब के मुफस्सरीन ने दो मानी बयान किए हैं। नंबर एक कि आपके अंदर कुव्वत खिताबत थी, जोरे बयान था। और दूसरे मानी क्या है कि बेहतरीन कुव्वत फैसला, डिसीजन मेकिंग पावर जो थी ना वो आपके अंदर थी। बाज लोग ना दो बातों में से एक का फैसला नहीं कर पाते और बाज फौरन फैसला कर लेते हैं, सोचते समझते हैं फिर डन कर देते हैं कि नहीं ये चीज जरूरी है। तो ये फसल खिताब कब चाहिए होती है, जब झगड़ा कोई हो, फैसला निजा की सूरत में। दो बातें आपके सामने आई हैं, उन दोनों में से एक। यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको जो अता किया था तीन बातों का जिक्र किया है। नंबर एक मजबूत बादशाहत, रूहानी भी और मादी भी। नंबर दो हिकमत, जिसमें नबूवत भी और सही फैसले और सही वक्त पर फैसले। और नंबर तीन जो है अल्लाह ताला ने आपको कुव्वत खिताबत से भी नवाजा था और बात का फैसला जो था वो समझा दिया था। अच्छा, ये जो अल्लाह ने सिफात दी है ना, जो आयत 20 के अंदर है, अब अल्लाह ताला इसकी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे जो थे वो कैसे हकीम थे, कैसी हिकमत थी, कैसी किस तरह से वो फैसला करते थे। वहल अता का नबाउल खस्म, और क्या पहुंची तेरे पास बड़ी खबर खस्म की। वहल अता का, और क्या आई तेरे पास। और याद रखिएगा, सवालिया अंदाज हमेशा सोचने समझने पर आमादा किया करता है। सवालिया अंदाज जो है वो सोतों को जगाता है, गाफिल को बेदार करता है, और हिकमत के नुक्ते जो है वो सामने लाकर जो है वो रख देता है। तो वहल अता का की जमीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके पास जो है वो खबर पहुंची दाऊद अलैहिस्सलाम की। नबा आम खबर नहीं, बड़ी खबर। अल खस्म, और खस्म जो है खसूमत करने वाला, झगड़ने वाला। और ये इस्म जिन्स है, ये लफ्ज इस्म जिन्स है। और इसके इससे मुराद क्या है, ये लफ्ज वाहिद और जमात दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और खस्म कहते किसे हैं, ये बात भी समझना जरूरी है कि खस्म से मुराद क्या होता है। इसमें इससे मुराद ये होता है कि ऐसा झगड़ा या मुकदमा जिसमें फरीकैन के हकूक जेरे बहस हो। और फरीकैन कौन होते हैं, एक होता है मुद्दई और एक होता है मुद्दालय। एक दावा करने वाला होता है और जिस पर दावा किया जाता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, फरीक मुखालिफ। बहरहाल तो अब जब जो क्या वो खबर भी आप तक पहुंची जब वो झगड़ा कर रहे थे, खस्म से मुराद एक झगड़ा करने वाला हो सकता है, दो झगड़ा करने वाले हो सकते हैं, मुद्दई भी और मुद्दालय भी, दोनों मुराद हो सकते हैं। तो बहरहाल जो है, और हुकूक होते हैं, झगड़ा किस बात का होता है, एक कहता है नहीं ये मेरा हक है इस चीज पर, दूसरा कहता है ये मेरा हक है, यानी गोया के फरीकैन के हुकूक जेरे बहस हो झगड़े में। अच्छा, वो झगड़ा कब हुआ कि जब जो थे वो झगड़ा करने वालों की खबर तुझ तक पहुंची, इस तसव्वुरु, जब उन्होंने जो है वो क्या किया कि जब उन्होंने जो है दीवार फांद ली। आप ये आपको पता है, जब आपने सूरत सूरत फातिहा शुरू की थी तो मैंने आपको सूरत के मानी बताए थे, तो सीन व रा के एक मानी होते हैं शहर के आसपास हिफाजती दीवार, और इसी से तसव्वुरु दीवार पर चढ़ना, दीवार को फांद लेना, दीवार जो है उसके ऊपर से आ जाना। तो इस तसव्वुरु, जब उन्होंने दीवार जो थी, फसील जो थी, उसको फांद लिया, दीवार कूद कर आए, अल मेहराब, हर्ब की जमा है ना, हर्ब इसका रूट है, और मेहराब का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है इबादत खाने के लिए भी, और इसके अलावा जो है मस्जिद के अंदर जो खास तौर पे मेहराब बनी हुई होती है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, तो मजबूत इमारत के लिए भी ये आता है ना, गोया कि जब वो मेहराब में थे, तो बाद मुफस्सरीन ये कहते हैं कि ये इनके घर के अंदर का कोई कमरा था या इनका इबादत खाना था, जहां बैठकर ये खलवत में इबादत किया करते थे। और इनके बारे में ये बात भी आती है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त को चार हिस्सों में तकसीम किया हुआ था, एक दिन उन्होंने अपनी जात के लिए रखा था, दूसरे दिन वो क्या करते थे कि दरबार में बैठते थे और फैसले किया करते थे, और एक दिन वो क्या करते थे कि वाजो नसीहत करते थे। तो यानी एक दिन जो है उनका इबादत का है, एक दिन जो है अवामी फैसलों का है, एक दिन उनका दावा का है, और एक दिन उनका घर वालों का है, अहलो याल के लिए भी उन्होंने अपना एक दिन रखा हुआ था। तो अब ये दिन था जो अपने नफ्स के लिए रखा है, तो किस लिए, कि वो अपनी इबादत करें, क्योंकि उन्होंने अपने औकात तकसीम किए हुए थे और बड़े ही बेहतरीन मुंतजिम थे, बड़ी जबरदस्त इनकी बादशाहत थी। तो अब ये दिन था इनकी इबादत का, और इबादत के दिन जो है जब ये बैठे इबादत कर रहे हैं, अब दीवार फांद कर आना का मतलब क्या है कि ऐसे लोग अंदर दाखिल नहीं हो सकते थे, इसका मतलब है कि वो कहीं छुप छुपा कर अलग खलवत में कहीं बैठे हुए इबादत कर रहे थे, और कुछ लोग दीवार फांद कर आए, और वो थे खसमू या खसमान, झगड़ालू, दो झगड़ा करने वाले। इस दखलू, जब वो दाखिल हुए, अला दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम पर, तो अब क्या हुआ कि वो दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर पहुंचे, तो फजिया मिनहुम, और दाऊद अलैहिस्सलाम इनसे डर गए। अब ये बात भी याद रखें कि यहां पर जो बात सामने आ रही है वो क्या है कि अगर कोई शख्स जो है वो अलग थलग बैठा खामोशी के साथ अपनी खलवत गाह में मौजूद है और इबादत कर रहा है, और अचानक कोई उसके ऊपर आ जाए, तो इंसान क्या करता है, फौरन ही घबरा जाता है। और इससे ये बात भी पता चलती है कि नबी का तबई खौफ जो है वो नबूवत के खिलाफ नहीं है। जैसे पहले भी एक पैगंबर के बारे में आपने पढ़ा था, क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम, कि जब वो रस्सियां सांप भर कर दौड़ने लगी तो मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त डर गए। तो ये बात नबूवत के खिलाफ नहीं है। आमतौर पे जब कोई ऐसी चीज नजर आती है तो फौरन क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा घबरा जाता है। एक एक ये वाली बात के ला यख्शूना अहदन इल्लल्लाह, ये और बात है कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, तो डर तो अल्लाह ही का होता है, और ये पैगंबरों की शान है कि खशियत अल्लाह के सिवा और किसी से वो नहीं डरते थे। लेकिन जैसे किसी भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज से तबई तौर पर डर जाना, सांप से, बिच्छू से, ऐसे किसी, आप बैठे कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अचानक कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो वो इबादत कर रहे हैं और अचानक आके लोग आपके सामने जब नजर आए तो आप डर गए। आलू ला तखफ, वो बोले आप डरिए मत। तो उन्होंने क्या किया, पहली बात उन्होंने क्या की, आप वो भी नोट करते जाइए कि उन्होंने दीवार को फांदा था। दूसरी बात क्या पता चलती है कि खसम झगड़ा करने वाले थे। तीसरी बात क्या कि उन्होंने कहा डरिए नहीं, तरीका उल्टा इख्तियार किया, डिफरेंट तरीका, और साथ ही पहली बात की डरिए नहीं। और फिर साथ ही क्या कहा, खसमान, हम दो झगड़ा करने वाले हैं। गोया के दो लोग थे, पता चल गया, तस्निए का सीगा आ गया कि दो झगड़ालू हैं। बगाबादुन अलाबादिन, हम में से एक ने दूसरे पर जो है वो ज्याती की है, क्योंकि बगा के साथ अला का सीगा आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ज्याती के मानी आ गए। वैसे तो चाहने के मानी में भी आता है ना, तो ज्याती की है एक हमारे ने दूसरे पर, तो हम वो बता रहे हैं कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्याती की है। फिर अगली बात क्या कहते हैं, फाकुम बैनना बिल हकी, बस हकम यानी जज बनना, फैसला करना हमारे दरमियान हक के साथ, अदल और इंसाफ के साथ हमारे दरमियान फैसला करना। ऐसा ना हो कि तुम जब फैसला करो तो हमारे दरमियान जो है वो अदल ना करो। अब आप यहां पे देखें कि इससे क्या बात पता चलती है कि वो लोग जो थे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से बात क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तुम हमारा फैसला करो तो अदल के मुताबिक करना, कोई ज्याती ना करना। अगली बात एक और कही जो बड़ी अजीब बात है, वला तुश्तित, और ज्याती ना करना। मैंने आपको बताया कि शीन तोए तोए के मतलब दरिया का किनारा, समंदर का साहिल भी होता है। दूर होना, करना, जुल्म करना, ज्याती करना, हद से कदम आगे रखना, ये उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जो है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से ये बात कहते हैं कि आप जब फैसला करें तो ज्याती मत कीजिएगा। एक तरफ दीवार फांद कर आए, किसने कहा कि तो आप दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, खुद कितना नाशायस्ता तरीका इख्तियार किया, और उनका डरना फितरी है तो कहते हैं डरे नहीं, ऊपर से खुद ही फैसला चाह रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि आप जो हैं ऐसा ना हो कि ज्याती कर जाएं। और आप देखें कि उनका हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह कहना बड़ा ही अजीब बात है। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं, आप देखें कि कितने नेक और मुत्तकी हैं, कैसे बेहतरीन हाकिम हैं, कि उनको अचानक देखकर उनको गुस्सा नहीं आया कि कौन मेरी इजाजत के बगैर मेरे खलवत खाने में, मेरी मेहराब में आ गया। और वो आम तौर पर जो है होता क्या है कि जब कोई अपनी जरूरत को लेकर आए तो दरबान होते हैं जो रोक लेते हैं, तो अब दरबान तो थे नहीं क्योंकि वक्त ही ऐसा नहीं था कि कोई आता, कोई भी नहीं था, तो बस वो आ गए ना। तो आपने निहायत हिल्म के साथ इनकी ये सारी बातें सुनी है, कोई बात पता चल रही है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी कोई जवाब दिया हो, तो किस दर्जा आपके अंदर जो है वो सब्र था और किस दर्जा आपके अंदर हिल्म था, और कितनी तवज्जो से उनकी बात सुन रहे हैं और वो बढ़ते चले जा रहे हैं और कहते हैं वला तुश्तित, और हम पर ज्याती ना कीजिए, वाहदीना इला सवा सिरात, और हमें दिखा दीजिए दरमियाना रास्ता। सवा के मानी क्या होते हैं, दरमियाना, बराबर, सीधा, तो हमें सीधा दरमियाना रास्ता जो है ना वो आप हमें दिखा दीजिए, यानी हमें सीधी राह जो है बता दीजिए, तो गोया के आप अदल कर दीजिए। अच्छा, अब जो है सिरात, यानी आप देख लें रास्ता है, बड़ा मुश्किल है लेकिन बस सीधा हमें आपने बताना है। अब ये अभी अभी उन्होंने सारा ना ये जितनी बात की है ये क्या है, तमहीद है, अभी अपना मसला कोई नहीं रखा। आप सोचें किसी जज को जो मुद्दई है, वो जो दावेदार है, खसमान है, वो ऐसे आके बात करें तो क्या कर सकते हैं ऐसे। इन्ना हाजा अखी, अब बात बताते हैं कि बेशक ये मेरा एक भाई है, लहू तिसुन, इसके लिए है 9, व तिस ऊना, और 90, तो 90 पर 9 आप लगाएंगी तो कितने बन जाएंगे, 99, 99, ये है मेरा भाई। और यहां भाई से मुराद सगा भाई नहीं है, दीनी भाई हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, ये है मेरा एक भाई और इसके लिए है 99, नाजतन दुम्बी वलिया नाजतुन वाहिदतुन, और मेरे लिए है एक ही, कि इसके लिए 99 दुम्बी है और मेरे पास एक ही है। फकाला, बस इसने कहा या ये मुझसे कह रहा है, फाफा आया है, मतलब वो सारी लंबी कहानी नहीं है कि क्या है, बस फकाला, बस इसने कहा अकफिलनी हा, मुझे कफील बना दो इस एक का भी। हा आ गया ना, इकफिलनी हा, आपको पता है ना कफालत होता है किसी को पालना, किसी का कफील बनना, किसी का ख्याल रखना, तो अब ये जो है ये मुझे कहता है कि ये एक दुम्बी भी मुझे दे दे, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं तो 99 की भी कर रहा हूँ, ये एक की भी मैं कर लूंगा, तुझसे नहीं है संभलती, बस मैं ही इसको संभाल लूंगा, तू मुझे दे दे ये एक भी। वह अज़नी फिल खिताब, और मैंने आपको बताया था कि अज़ा का लफ्ज जो है ये गलबे के लिए भी इस्तेमाल होता है। वह अज़नी, और इसने क्या किया, वह अज़नी, और ये गालिब आ गया मुझ पर, अज़नी और जबरदस्ती की मेरे साथ, इसने गलबा किया मुझ पर, इसने मुझसे जबरदस्ती की। फिल खिताब, खिताब के मानी क्या है, ये मस्दर है, बात गुफ्तगू कलाम में इसने मुझ पर जबरदस्ती की, और इससे मुराद क्या है कि इसको बातें बहुत आती हैं, मेरी एक ही दुम्बी इसकी 99, 99 का मतलब यह है कि अमीर भी है, जाहिर है इतना कुछ है इसके पास मालो दौलत, तो जिसके पास मालो दौलत होती है बाज़ुकात उसको बातें भी बहुत आती हैं, ज्यादा जैसे तेज होता है, और बाज़ुकात जो कमजोर लोग होते हैं ना हकदार होते हैं लेकिन अपने हक को ना वाजे नहीं कर पाते, कह नहीं पाते। तो बहरहाल वअज़नी फिल खिताब, और इसमें जो है क्या किया कि ये गुफ्तगू में मुझ पर जो है वो गालिब आ गया, इसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। अब वो ये नहीं कह रहा कि इसने मेरी मेरी जो दुम्बी है उसको छीन लिया है, मिला ली है, ये नहीं कहा, कहा कि मेरी दुम्बी, एक दुम्बी मुझसे मांग रहा है और अपना हक, ये जो कह रहा है कि ये दुम्बी मुझे दे दे, ये इतनी बड़ी शख्सियत का आदमी है, इतना अमीर है, ये अमीर मैं हूं गरीब, और ये बात ऐसे कर रहा है कि मैं इसके मुतालबे को रद्द नहीं कर पा रहा, ये नहीं कहा कि ले लिया मुझसे अपनी दुम्बियों में शामिल कर ली है, अभी क्या है कि उसकी तरफ से मुतालबा है, और ये जो है ये आके मुकदमा जो है वो पेश हो रहा है। अज़नी फिल खिताब, और अपनी गुफ्तगू में इसने मुझे जो है वो दबा लिया है। अब आप देखिए कि होता क्या है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बात को सुनते हैं, पाला कहते हैं लकद जलमा का, तुझ पर जुल्म किया है, बिसवाली, सवाल यहां पे मुतालबे के मानी में है, ये जो मुतालबा किया है ना इस आदमी ने एक दुम्बी का, इसने जुल्म किया है, न जति का इला न्याज ही, और यहां पे जो है क्या है कि न जति का तेरी दुम्बी का, ना जतन आया था ना पीछे कि मेरे पास है ना जतुन वाहिदतुन, अब ये जो शख्स है जिसके पास 99 है इसने जो तुमसे मुतालबा किया है ना जति का तेरी दुम्बी का, क्यों मुतालबा किया, इला की तरफ, ने आज ही अपनी दुम्बियों के साथ, तो नाजतुन वाहिद है और ने आज इसकी जमा है, ने आज, तो गोया के अपनी दुम्बियों की तरफ मिलाने का जो इसका इरादा है कि ये भी मुझे दे दे, तो इसने ये जो मुतालबा किया है ये है जुल्म। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसकी बात को सुनते हैं और ये जवाब देते हैं और साथ ही कहते हैं इन्ना कसीरम मिनल खुलताई, और बेशर बेशक अक्सर मिनल खुलताई, खुलताई जो है ये खा लाम तोए से है, खलीतुन इसका वाहिद है, खलीतुन, खलीतुन इसका वाहिद है, और जैसे आप उर्दू में भी कहती हैं खलत मलत, मिला जुला, इससे आप याद रखें, तो असल में कहते हैं कि खुलाता या खलीत इसके मानी होते हैं जुजवी शरीकेकार, ऐसे कारोबारी शराकतदारी जिसमें जो दो शरीक है ना कुछ पहलुओं में तो आपस में शरीक हों और कुछ पहलुओं में वो आपस में आजाद हों। मसलन आप देखें कि सुरैया और शियाना ये दो साथ रहती हैं, हमसाए में हैं, इनका एक कारोबार है, ठीक है, कारोबार जो है वो ये है कि मसलन इनके पास चूंकि दुम्बियों की बात है, दुम्बियों की मिसाल ले लेते हैं कि इन इनके पास इन्होंने जो है कुछ दुम्बियां या एक रेवड़ इनके पास है, और क्या करते हैं कि वो जो रेवड़ है ना दोनों के पास कुछ कुछ दुम्बियां हैं, एक के पास 20 है दूसरी के पास भी 20 है दुम्बियां हैं या बकरियां जो भी 20-20 हैं, तो दोनों कहती हैं कि चलो कारोबार ना कर लें कि एक चरवाहा रख लेती हैं दोनों मिलकर, मसरूफ भी रहती हैं दोनों, तो एक चरवाहा दोनों ने रख लिया और चरवाहे को पैसे ये मिलकर देंगी, 20-20 दुम्बियां अपनी हैं जाती हैं इनकी, उसके बाद रात दुम्बियां आकर या बकरियां कहां ठहरेंगी, जगह भी वो किराए पे खरीद ले, मतलब किराए पे ले ली है, ये जगह उन्होंने जो ली भी है उसके पैसे भी दोनों किराया भी इकट्ठा देती हैं और चरवाहे की पेमेंट भी ये इकट्ठी करती हैं, लेकिन दुम्बियां इनकी अपनी अपनी है। तो अब क्या है, ऐसे शरीक को जो है ना वो खलीत कहते हैं कि कुछ मामलात में वो शरीक है और कुछ में वो आजाद है। समझ आ गई? तो अब अल्लाह ताला यहाँ पे कहते हैं वइन्ना कसीरम मिनल खुलताई, कि बेशक अक्सर इस तरह मिलजुल कर रहने वाले। अब जैसे एक घर होता है, किराया लोग मिलकर देते हैं, घर के अंदर आजादी है कि खाएं पकाएं क्या, अपना अपना खाना लोग बनाते हैं। अक्सर यहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, यानी कंबाइंड दो फैमिलीज रह रही हैं ताकि किराए की बचत हो जाए, उसके लिए भी कि मिलजुल कर रहने वाले। अच्छा, वो लोग जो खलीत होते हैं ना, जो मिलजुल कर रहते हैं, लयबगी बादहुम अला बादिन, ये है अहम बात, इसको आप हाईलाइट करें कि मिलजुल कर रहने वाले क्या करते हैं, कि वो लोग जो हैं ये करते हैं कि ज्याती करते हैं। लयबगी, क्योंकि यबगी के साथ आगे अला भी आ रहा है, अलबत्ता ज्याती करते हैं एक इनका दूसरे पर, कि वो लोग जो मिलजुल कर रहते हैं तो एक दूसरे के साथ जो है वो ज्याती करते हैं। इससे हमें फिर क्या बात पता चलती है कि ये जो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, या मिलकर दो कारोबारी लोग ये जो होते हैं, दो बिजनेस करने वाले, या फिर जैसे तालिबे इल्म है एक क्लास में आपस में मिलजुल कर बैठे हुए हैं, तो जो लोग भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो क्या करते हैं कि मिलजुल कर रहने वाले एक दूसरे पर ज्याती करते हैं। क्यों ज्याती करते हैं? या तो वो अमीर होते हैं, बड़े होते हैं, उनका एक मर्तबा जाहो मनसब होता है, और या फिर ये कि बात उनको बहुत ज्यादा करनी आती है, जो तेज तरार आदमी होता है वो भी, और जो रुतबे दर्जे वाले वाला हो वो भी, तो क्या करता है कि अक्सर दूसरे पर ना ज्याती करता है। ज्याती कैसे करता है? उसका हक तल्फ कर जाता है, और उसको जो अहमियत दी जानी चाहिए उसको वो अहमियत नहीं देता। और बाज़ औक़ात जब दूसरे का आप हक तल्फ कर जाते हैं तो वो गुनाह का सबब बन जाता है। इस चीज में बड़ी एहतियात की जरूरत है। जैसे मैं अक्सर ये कहा करती हूं कि बेटी सो रही हो तो मां कहती है दरवाजा बंद कर दें बेचारी, और बहू सो रही हो तो कहती है लो सूरज आसमान पर चढ़कर आ गया, अभी तक इसको तौफीक नहीं है, देखना जरा अभी तक सो रही है बहू रानी। या फिर ये कि शोहर को उसके मियां को तो नहीं पता, लेकिन हम बातों बातों में बता देते हैं कि बस दिन चढ़े तक सोती रहती है, अब तुम आयो खाना भी नहीं बना तो ऐसे कैसे बनना था आखिर, तो कई रीजन होंगी उसके जागने की, है ना। तो बहरहाल मुख्तसर बात क्या है कि आपस में जो लोग भी रहते हैं एक दूसरे पर ज्याती कर देते हैं। फिर कौन नहीं करते? इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती, दो बातें जिनके अंदर पाई जाती हैं, ईमान और अमले सवाले, मगर वो लोग जो ईमान लाए और अमले सवाले किया। और वक़लीलुम मा हुम, इसको तो आप हाईलाइट कर लें, इसको तो आप लिख लें, और मैं भी लिख लूं अपने दिल पर लिख लूं। और क्या अल्लाह ताला ने यहां पर कहा? वक़लीलुन, और वो थोड़े हैं, वक़लीलुन और ऐसे लोग कम हैं। मा यहां पे जो है ना कलील के लिए आया है, कलील के साथ माँ का इजाफा जो है ना इसने मुबालगे का मफहूम पैदा कर दिया है। वक़लीलुम मा हुम, और लोगों ऐसे लोग बहुत कम हैं, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। इसके मानी ये हैं कि ये जो है ना कि मिलजुल कर रहने वाले एक दूसरे पर जो ज्याती करते हैं, सिर्फ अहले ईमान जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है और अमले सवाले के जो पाबंद होते हैं, वो ना दूसरे पर ज्याती करते हैं, ना उसका माल हड़प कर जाते हैं, ना उसके हकूक में कमी करते हैं, ना उसको दबाते हैं। वो लेने वाले नहीं होते, देने वाले होते हैं। और इस बुलंद किरदार के लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो तमाम सासों को डरना चाहिए, तमाम बहुओं को डरना चाहिए, दो कारोबारी लोगों को डरना चाहिए, दो मिलकर जो एक गाड़ी पर सफर करते हैं उनको डरना चाहिए, मिलकर जो कुर्सियां लगा के बैठते हैं उनको यानी हर एक को डरना चाहिए, मुझे भी और आपको भी ना। ऐसे लोग बहुत कम हैं, और रोना इस बात का है कि उस कम में मेरा और आपका नाम है कि नहीं, मेरा और आपका नाम है कि नहीं। असल बात यह है। अच्छा, यहां तक जो है बात हुई, वज़न्ना दाऊद और समझ गए दाऊद, दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे वो समझ गए, क्या समझे? अन्नमा फत्तन्नाहू, कि बेशक हमने उसे आजमाया है, हमने उसको आजमाइश में डाला है। फस्तगफरा रब्बहू, पस उसने अपने रब से इस्तगफार किया, वह खर्रा, और गिर पड़ा। और आपको पता है खर्रा के मानी होता है आवाज से गिरना, और यहाँ पे मुफस्सरीन कहते हैं कि खर्रा के मानी है सजदा, राकियन का मतलब है रुकू, तो सजदा रुकू किया और सजदा किया। वह अनाब, नौब से है नून वो बा, लौटना, दिल का रुजू करना। तो खर्रा राकियन जिस्मानी तौर पर रुजू है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया। वह अनाब और दिल का भी रुजू कर लिया। और दिल का रुजू क्या होता है कि इंसान कहे कि मैं ही मुझसे ही गलती हुई है। और आप सोचिए तो सही, मैं इस मिसाल पर यह देख रही थी कि दाऊद अलैहि सलाम जो थे कितने बेहतरीन अल्लाह के बंदे थे, कि एक तमसील है, एक मिसाल है, दो लोग आए हैं और एक मुकदमा आपके सामने रखा है। अच्छा, यहां पर फिर एक और बात भी है कि ये खसमान थे कौन, खसमान थे कौन। इस वाक्य को हम समझ लेते हैं कि ये खसमान कौन थे। एक राय ये है कि ये वाकया फर्जी वाकया था, आने वाले दोनों फरिश्ते थे और अल्लाह ने रफाए दर्जात के लिए आजमाइश में डाला। ये दो फरिश्ते थे और यानी हकीकी ऐसा नहीं था, हकीकत में ऐसा नहीं था, क्योंकि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने खलवत खाने में बैठे हुए और हर एक से हटकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं। तो ये एक गैर मामूली वाकया था कि इस तरह पूरे सरार तौर पर दीवार को जो है वो जंप करके कूद कर किसी का आ जाना और आकर इस तरह से बात करना कि डरिए भी नहीं और वला तुष्टित और ये सारी बात करके। तो ये थी क्या कि अल्लाह ताला ने जो है वो आपको आजमाया था और आजमाया था आपके दर्जों को बुलंद करने के लिए। दूसरी राय ये है कि आने वाले दोनों इंसान थे, वाकया हकीकी था और दरअसल ये आपके सब्र तहमुल का इम्तहान था। ये क्यों इम्तहान लिया अल्लाह ताला ने, अन्नमा फतन्ना हु, ये कि हमने उसको आजमाया था। अच्छा, सब्र तहमुल का इम्तहान कैसे लिया? नंबर एक, इस वाक्य में नागवारी के कई पहलू हैं, गुस्से के कई पहलू हैं। आपके घर में और आपके भी अंदर जो आपकी प्राइवेसी है, आपका अंदर का रूम, घर के अंदर एक लिविंग रूम होता है, फिर एक ड्राइंग रूम होता है, फिर एक और कई कमरे होते हैं, फिर कहीं जाके आपका अंदर कमरा होता है ना। तो आपके अंदर के कमरे में बिला इजाजत कोई आ जाए, बगैर नौ किए कोई अंदर दाखिल हो जाए, तो नंबर वन, बिला इजाजत दीवार फांद कर आना। नंबर दो, आपके वो इबादत के मखसूस औकात थे, आप नमाज पढ़ रही हो, आप कुरान पढ़ रही हो, सारे काम सिमटा कर आपका वक्त है, थोड़ा सा आप कर रही हैं और बच्चा आपके पास आ जाए तो आप कहती, कितनी दफा कहा है कि जब मैं क्लास की तैयारी कर रही हूं पढ़ाने की या पढ़ने की, मुझे तंग मत किया करो। अब क्या चाहते हो, खाना पकाना सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक कर दिया सब कुछ, अब भी आप मेरे पास मुझे छोड़ते ही नहीं, कुछ लम्हे तो मेरे लिए भी रहने दिया करो। कभी आप अंदर घुसकर फोन करती हैं दोस्त को, अम्मी को, अपने शोहर को जो सऊदीया में है या फिर दुबई में है, आप तवज्जो से बात करना चाह रही हैं, अब फिर बच्चे आगे कहा है कि मेरे मुझे मत तंग करो, ये मेरा वक्त है, आप गुस्से में आ जाती हैं, मैं गुस्से में आ जाती हूँ, है ना। तो क्या है कि जो जो वक्त आपके लिए अपना मखसूस है, और यहाँ पे उनकी इबादत का मखसूस वक्त था और अल्लाह को बहुत याद करने वाले थे और इतना बेहतरीन याद करते थे, कायनात आपके साथ चलती थी। तो ये है दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि जो आने वाले थे उनके अंदर आजजी नहीं थी, उनका तर्ज गुफ्तगू जो था आपकी हाकिमाना शान के जो है वो मुनासिब नहीं था उसके लिए, है ना, नामुनासिब अंदाज था। क्या वला तुष्टित, अब ये कहना कि गुस्सा ना करना, अब खुद ही खलवत खाने में आए हैं, दीवार क्रॉस करके आए हैं और साथ ही कह रहे हैं डर भी क्यों रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि गुस्सा ना करना। तो कमाल दर्जा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया हजरत दाऊद अलैहि सलाम ने। एक जुमला भी ऐसा नहीं मिलता कि आपने जो है वो कोई एक जुमला बोला हो कि तुम क्यों आए हो, बेवक्त क्यों आए हो। आपने फैसला तो किया कि जिसके पास 99 हैं उसने एक का मुतालबा करके तहकीक जुल्म किया है और आपस में जो मिलजुल कर रहने वाले हैं वो एक दूसरे पर ज्यादतियां कर दिया करते हैं। बाज कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ये जुमला है, बाज कहते हैं कि अल्लाह ताला का ही है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये बात कही, तो यहां पे तो क्लियर बात है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, है ना। तो इससे ये बात पता चलती है कि ये जो इम्तहान लिया गया तो ये इम्तहान आपके सब्र व तहम्मुल का इम्तहान था। एक और राय भी है, तीसरी राय, आपकी आजमाइश ये थी कि आप काजी होते हुए भी झगड़ों में उलझे हुए مدعیوں اور مدعا علیہان سے چھپ کر بیٹھتے تھے. اب تھے قاضی, حاکم بھی تھے اور بیعت وقت قاضی بھی تھے. اب قاضی جو ہے اس کو ہما وقت فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے, ہما وقت ہر وقت, کیونکہ عوام میں مسائل مشکلات ہیں. جیسے ڈاکٹر جو ہے وہ خدمت کے لیے تیار ہو, استاد جو ہے وہ اپنے طالب علموں کے لیے ہر وقت تیار ہو, اس کو غصہ آ جائے کہ اب یہ سوال کیوں کر لیا, ابھی کل تو بتایا تھا, اتنی دفعہ بتایا پھر یہ پوچھتے ہو آپ لوگ. استاد بھی بعض اوقات غصے میں آ جاتا ہے, آتا ہے نا, اور ڈاکٹر غصے میں آ جاتا ہے کہ کلیننگ پہ کیوں نہیں آئے, اب گھر کے اندر آ گئے, کوئی وقت میرا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ بات کیا ہے کہ آپ تھے جج اور آپ کے پاس جو تھے وہ لوگ اندر آ گئے. اچھا, اب یہاں پر جو ہے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, اور سوال کیا ہے کہ کیا یہ جو مثال پیش آئی تھی, کیا آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو آپ سمجھ گئے, ہے نا, وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ, اور سمجھ گئے داؤد علیہ السلام کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ آزمایا ہے. تو اس سلسلے میں جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ کیا سمجھے کہ گویا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی بات کرتا ہے, آپ اس کو سمجھاتے ہیں, سمجھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ کے دل سے آواز آتی ہے کہ ارے بالکل اسی طرح کا مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے, اچھا فلاں جو میں کام کرنا چاہ رہی تھی یہ میرا کام ٹھیک نہیں تھا اور یہ تو غلطی ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی آپ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہے نا, کہ آپ کے دل میں بھی کوئی ایک خیال آیا تھا. کیونکہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کے ساتھ ہی فیصلہ دیا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام چکنے ہو گئے, کہ اسی طرح کے ملتے جلتے امتحان میں وہ خود بھی مبتلا ہیں. تو مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث سے کوئی واقعہ ملتا نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ جس کو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بیان کیا جائے. تو اصل بات کیا ہے کہ آپ بہت بڑے بادشاہ تھے, اجتماعیت کے ساتھ آپ کا تعلق و رشتہ رہتا تھا, اور موقع بموقع وقتاً فوقتاً لوگ آپ کے پاس آتے تھے. تو گویا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تو ایک خدا ترس بادشاہ تھے, وہ تو ایسا کوئی اقدام کر ہی نہیں سکتے تھے کہ ان کے دل میں ذرا سی بھی یہ خواہش ہو کہ وہ کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کو وہ لے لیں, یعنی 99 پہلے ہی ہیں اور ایک اور جو کسی کے پاس ہے اس کو بھی لے لیں. تو اصل بات کیا ہے کہ دوسروں کے واقعے کے ذریعے سے آپ نے جو سبق لیا, تو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی خواہش پیدا ہوئی تھی, آپ کو خیال آیا تھا کوئی ایسا, اور آپ نے کیا نہیں تھا, مانگ رہا ہے, اس نے مطالبہ کیا ہے, یہ نہیں کہا کہ وہ دمبی ملا لی ہے, دمبی ملانے کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ بات چیت میں اب غالب آ گیا, چاہتا ہے کہ مجھ سے لے لے, اور وہ مقدمہ لے کر آ گئے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ گویا کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ بھی کسی ایسے ہی امتحان میں جو تھے وہ مبتلا تھے, اور فیصلہ کرتے کرتے وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے, اور وہ فوراً ہی رکوع اور سجدے میں گر گئے. اور اناب سے مراد دل کا رجوع ہے. یاد رکھیے گا کہ رکوع اور سجدہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی انابت کی نشانی ہے, یہ ظاہری دلیل ہے, لیکن انابت کی اصل روح جو ہے وہ دل کی انابت ہے, کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے. اور جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ وہ استغفار کرتا ہے, اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے. فاستغفر ربہ, پھر اس نے اپنے رب سے استغفار کیا. فخر راکعاً واناب, اور ظاہری طور پر بھی نماز میں وہ مصروف ہو گئے, اور دل سے بھی انہوں نے رجوع کیا, اسی لیے تو استغفار کرنے لگے. فغفرنا له ذلك, اور ہم نے اس کو جو ہے وہ اس پر بخش دیا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے جو بھی غلطی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو غلطی تھی, ان کے دل میں جو خیال بھی آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا. تو آپ دیکھ لیجئے جب قرآن اس پر خاموش ہے کہ وہ کیا آزمائش تھی, تو ہمیں بھی اسرائیلی روایاتوں کو آگے رواج نہیں دینا چاہیے اور ان کو آگے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال آپ کے دل میں خیال تو کوئی آیا تھا جس کی وجہ سے ایک تمثیل سے آپ کو جو ہے سمجھایا گیا, یا پھر حقیقی واقعے سے آپ کو سمجھایا گیا. ایک طرف تو یہ ہے کہ عام طور پر جو خیال آتے ہیں, جیسے आप पीछे सूरत बकरा के आखिरी रुकू की तफसीर में ये पढ़ चुकी हैं कि अल्लाह ने वो अगर किसी को बुरा ख्याल आ जाए वो अमल ना उस पर करे, अल्लाह ने वो तो माफ कर दिए जब तक के हम अमल ना कर लें। लेकिन जो पैगंबर है ना उसके वो मासूम अनिल खता होते हैं, तो आप देखें कि उनका ख्याल आना भी अल्लाह ताला कैसे उनकी हिफाजत करते हैं ना, कैसे उनकी इसलाह करते हैं। फगफरना लहू जालिक, हमने आपकी ये गलती आपका ये जो ख्याल था इसको माफ कर दिया। व इन्ना लहू इंदना, और बेशक हमारे पास था लहू इसके लिए, लहू की जमीर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए हमारे पास क्या था, लजुल्फा, जुल्फ जो है गुर्बत के लिए आता है, और जुल्फ जो है जैसे बालों को भी कहते हैं ना, ये बाल जो बहुत करीबी होते हैं ये जुल्फ, लोगों की जुल्फे लहराती हैं, हम जुल्फ का लफ्ज भी आता है, लजुल्फा। तो लजुल्फा के मानी क्या है कि यकीनन वो हमारे बड़े नजदीक था, आम नहीं थे बल्कि क्या थे, हमारे बड़े ही करीब थे। और ये मस्दर है वह हुस्ना माब, और बड़ा ही अच्छा ठिकाना था, माब मस्दरे मीमी है, तो गोया के वो बहुत अच्छे ठिकाने वाले हैं हमारे पास, रहने की जगह और वो ठिकाना जिसमें वो रहेंगे वो बहुत ही अच्छी है, जो कि हम जो हैं दाऊद अलैहिस्सलाम के को देने वाले हैं। अच्छा, अब यहां पर जो है वो सवाल ये पैदा होता है कि इस पूरी कहानी से क्या अमल के उसूल मिलते हैं, आप निकालिए अमल के उसूल, के अमल के क्या उसूल सामने आते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के किरदार की कौन सी बातें आपको पसंद आई, आप पूरे वाक्य पर गौर करें और फिर खुद अपने पास बाद में लिखें कि आपको क्या इसकी बातें पसंद आई अपने लिए, क्योंकि मैं और आप अपने आप को खूब जानते हैं। बहरहाल अमल के जो उसूल सामने आते हैं उनमें से एक ये है कि तबई खौफ नफूत के खिलाफ नहीं है। नंबर दो, बेकायदगी पर हकीकत हाल के जाहिर होने तक सब्र। इसमें मतलब क्या है कि जूं ही वो जंप करके आए आपने डांट डपट शुरू नहीं कर दी, बच्चा हमारे पास आता है और हम डांटना शुरू करते हैं, है ना, कोई भी हमारे पास आए जब हम अपने खास काम में मसरूफ हों हम उसको डांटना शुरू कर देते हैं, नाराज होने लगते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल डांटा डपटा नहीं। तीसरी बात ये कि आप बड़े आदमी थे, अब वो जरूरतमंद थे कि उनके मुकदमे का फैसला हो जाए, और आपके मर्तबे का तकाजा ये है कि आपने हतुल वसा सबर किया है, कोई बात मुंह से नहीं निकाली ना, मुझे तो बहुत ही मुतासिर किया इस वाक्य ने ना। और चौथी बात ये है कि अमली दबाव के साथ अगर हदिया तलब किया जाए तो ये जुल्म है। अब मसलन ये है कि अब वो जबरदस्ती भी तो वो ले सकता था ना जो दुम्बी थी एक, लेकिन मुतालबा कर रहा है कि मुझे दे दो, बस तुम खुद ही दे दो, गोया कि प्रेशराइज किया जा रहा है, तो दबाव डाला जा रहा है ना। तो अगर किसी से कोई चीज मांगी जाए और इस तरह प्रेशराइज किया जाए कि मांगा तो तोहफा जा रहा है पर प्रेशराइज करके कि अगला शख्स मजबूर हो जाए, तो ये चीज भी दीन में जो है वो जायज नहीं है कि दबाव डालकर जो है किसी से कोई चीज जो है वो मांगी जाए, ये चीज सही नहीं है। तो अमली दबाव के साथ तोहफा तलब करना भी जुल्म है। पांचवी बात क्या है कि मामलात की शिरकत बड़ी एहतियात की जरूरत है, अमल का उसूल, हक तलफी जो है ये गुनाह का सबब बन जाती है। तो क्या करना चाहिए कि जहां भी दो लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखा जाए, अपनी ना हर वक्त फिक्र की जाए। छठी बात ये है कि अल्लाह ताला ने ये इस गलती पर तमसीली अंदाज में, हकीकी थी बात या तमसीली थी बात, दाई को हिकमत के आदाब सिखाए हैं। कैसे कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इसलाह की बात नहीं सामने आई कि बात थी क्या, लेकिन ऐसे बात को पेश किया कि जरूरी बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंच भी गई और आपकी दिलाजारी भी नहीं हुई। तो यहां पे दाई के लिए बड़ा बेहतरीन जो है वो किरदार है, और अल्लाह ताला का ये कहना वा इन्ना लहू इंदना लजुल्फा, उनकी हमारे वो हमारा बड़ा नजदीकी था, बड़ा करीबी था, वा हुस्ना माब, और उनके लिए बड़ा ही अच्छा हमारे पास जो है वो ठिकाना है। तो इससे क्या बात पता चलती है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का अल्लाह के नजदीक बड़ा मकाम था, दुनिया में भी और आखरत में भी, कि जब वो अल्लाह के पास जाएंगे तो अल्लाह ताला ने उनके लिए बड़ा ही अच्छा मकाम जो है वो रखा है। अच्छा, यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्ना मआब, ये मकाम मिला कैसे, आपको भी चाहिए ये मकाम है, मुझे मुस्कुरा क्यों रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हल्का हल्का, जवाब क्यों नहीं देते? आपको भी चाहिए ये मकाम, बोले सब, हम सबको चाहिए क्या मकाम? अल्लाह के पास कुर्बत का मकाम और दूसरा अच्छा ठिकाना और रहने की जगह। अच्छा ये मकाम पता है आपको कैसे मिला? आजमाइश के बाद। अन्नमा फतन्नाहू, तो असल बात क्या है कि आजमाइशें जो आती हैं जिंदगी में आंधियां और तूफान बनकर, कभी मुआशी, कभी बीमारी की, कभी औलाद का होना, कभी औलाद का ना होना, और कभी दोस्तों का होना, कभी दोस्तों का ना होना, मुख्तलिफ आजमाइशें जो भी इंसान को आती हैं, तो आजमाइशें इसलिए आती हैं कि आजमाइशों के जरिए अल्लाह ताला बंदे का मकाम बुलंद करना चाहते हैं। अगर वो इन आजमाइशों में पूरा उतरे, बगैर आजमाइश के दर्जे नहीं बुलंद होते, रुतबे नहीं बुलंद होते। हम रुतबे तो बुलंद चाहते हैं लेकिन आजमाइश नहीं चाहते। अभी पिछले दिनों क्या था कि खुद ही आपने कहा कि क्विज होना चाहिए, फिर पांच पारों का होना चाहिए, फिर जब पांच पारों का रखा तो आप क्या कहने लगे, हम ये नहीं दे सकते, हमने ये तैयारी नहीं की, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ना? सबने नहीं कहा, बीच में से कुछ लोग ये कहने लगे ना, तो इससे क्या बात पता चलती है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह सब्र करना चाहिए, खामोश रहें। और फिर आप में से एक बहन तो फंस भी आ गई जो कह रही थी मुझे देना नहीं है, है ना? तो अगर हम ये बात ना कहें तो क्या है, मेरे और आपके लिए इसमें खैर है ना? बाजू का हम बोल जल्दी देते हैं, तो हिकमत और उसके साथ जो है वो अल्लाह ताला की जो मुख्तलिफ मेरे और आपके पास नवाजिशें हैं, तो उस सिलसिले में क्या है कि फिर मैं और आप सब्र करना सीखें। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहले मक्का के रवैये में दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई जा रही है, आप सोचे तो सही, तो मेरा और आपका फिर क्या मकाम है? तो आजमाइश मस्त है दर्जों की बुलंदी के लिए, फर्स्ट आने के लिए और अच्छा मकाम हासिल करने के लिए, खाम और खोट को अलग करने के लिए, कुंदन हम बन जाएं, आजमाइशें तो आकर रहेंगी। ये कदम कदम बलाएं, ये सवादे कुए जाना, वो यही से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी, है ना? दूसरी बात क्या है कि वह हुस्ना माब और अच्छा ठिकाना, तो इससे ये बात पता चलती है कि आजमाइशें मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन जब आजमाइशें मिलती हैं तो इसके बाद ही कोई, पहले कोई होता है कि नौकरी है ना, ऐसे ही आम दर्जे का ऑफिसर है, फिर उसको क्या बना दिया जाता है, सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है, फिर उसको इंचार्ज बना दिया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया जाता है, चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है। तो आजमाइशों के बाद ठिकाना अच्छा मिलता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी ज्यादा रियायतें मिलती हैं। तो फिर बात क्या है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। फिर इसका मतलब क्या है, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे राह, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। तो मेहनत मशक्कत मजदूरी जरूरी है। आगे जो आयतें हैं, आयत नंबर जो 26 है आज के सबक की आखिरी आयत, इसमें तीन बातें जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कही गई। पहली बात क्या है, या दाऊदू इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्दी, ए दाऊद अलैहिस्सलाम हमने आपको जमीन में खलीफा मुकर्रर किया, हमने आपको जमीन में नायब मुकर्रर किया, तो तुम्हें जमीन में हाकिम बनाया है, तो आप जो कुछ भी करते रहे और आइंदा भी आप करेंगे तो क्या है, आपको हमने नायब बनाया है, असल मालिक तो हम खुद हैं। दूसरी बात क्या है, फहकुम बैनन्नासि बिलहक, के लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ फैसला करना, फहकुम हकम कर, फैसला कर, बैनन्नास लोगों के दरमियान बिलहकी हक के साथ, ऐसा ना हो कि फैसला जब आप करें तो इंसाफ से हटकर फैसला करें। इसके मानी ये हैं कि जो खलीफा होता है, जो नायब होता है, जो इंचार्ज होता है, जो जिम्मेदार होता है, कमेटी के मेंबर होते हैं, जो शूरा होती है या गवर्नर या कौमी असेंबली के मेंबर जो भी होते हैं, उनका काम होता है लोगों के दरमियान हक और अदल के साथ फैसला करें, हक और अदल के साथ फैसला करें, फहकुम बैनन्नासि बिलहक। तीसरी बात क्या है और बड़ी अहम बात है, वला तत्तबिल हवा, और ना पैरवी करना हवा की, हवा अहवा इसकी जमा है, और ख्वाहिशात को कहते हैं, और हवा के मानी होते हैं बुलंदी से नीचे गिरना, और ख्वाहिशात के पीछे अगर आप चलें तो ये क्या करेंगी, ये तो कहीं गा नहीं छोड़ेंगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। तो असल बात क्या है, तीसरी बात कही कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करना, जो नफसानी ख्वाहिशात हैं कि जो तेरा दिल चाहे उनके पीछे ना लगना। अगर तुम उनके पीछे लग गए कि जो तेरा दिल चाहा वो तुम करने लगो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हाकिम है वक्त का, उसका महल बड़ा खूबसूरत है और उसके महल को जो सड़क आ रही है, सड़क थोड़ी सी टेढ़ी है, वो बैठा बैठा सोचता है कि ये जो रास्ते में सड़क टेढ़ी जो है, और टेढ़ी होने की वजह जो बहुत सी ये झोंपड़ियां हैं और ये गरीबों की झोंपड़ियां हैं, इनको हटा क्यों ना दिया जाए तो सड़क को सीधा कर लिया जाए। अपना महल है, महल तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है, और वो है गरीबों की झोंपड़ियां। या वो सोचता है कि मेरे महल की तरफ आते हुए ये गरीबों को देखकर तबीयत बड़ी गिरा गुजरता है तबीयत पे, ये गरीबों की झोंपड़ियां हटा देनी चाहिए, इनको यहां से उठवा देना चाहिए या इनको गिरा देना चाहिए। और इतनी इतना खूबसूरत महल और कितने महल और कितनी जमीनें, और वो गरीबों को बीच में से उठवा दे या उनकी झोंपड़ियां गिरा दे, तो बाज बादशाह ऐसा इकदाम कर लेते हैं, जुल्म करते हैं, कोई हक बात कहता है तो उसको कत्ल ही करवा देते हैं, और भी बहुत से ऐसे इकदाम है ना। तो अब क्या है कि अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करना, और ख्वाहिशात की पैरवी करना और नाइंसाफी करना, और जो है भूल जाना कि मैं खलीफा हूं और अपने आप को ही सब कुछ समझना होता क्या है, फयुदिल्लु फयुदिल्ला का अन सबीलिल्ला, तो फा फा आ गया बस, युदिल्ला का ये गुमराह कर देंगे तुझको, बस ये भटका देंगे तुझको अन सबीलिल्ला अल्लाह के रास्ते से। तो ये जो है ना ख्वाहिशात की पैरवी करना, या पिछली दो बातें भी, तीनों बातें, या सिर्फ ख्वाहिशात की पैरवी करना, क्योंकि ख्वाहिशात की पैरवी जो है वही नाइंसाफी पर इंसान को मजबूर करती है, और ख्वाहिशात की पैरवी होती है जो शैतान ने भी की थी, तो उसने कहा था कि मैं इंसान जो है इंसान से अफजल हूं और अल्लाह के हुक्म को ठुकरा दिया था। तो असल बात क्या है कि अल्लाह के रास्ते से चीजें हटा देती हैं। इन्नल्लज़ीना यदिल्लूना अन सबीलिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीद, बेशक वो लोग यदिल्लूना जो भटक जाते हैं अन सबीलिल्लाहि अल्लाह के रास्ते से, लहुम अज़ाबुन शदीद उनके लिए शदीद अजाब है। बिमा नसू, बिमा नसू क्यों, इसलिए कि उन्होंने भुला दिया है, निसयान नून सीन या के भुला दिया उन्होंने, यौमल हिसाब आखरत के दिन को, हिसाब के दिन को। तो अहले मक्का जो तौहीद का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहे, कुरान और नबी की मुखालफत कर रहे हैं, तो असल बात क्या है कि इन्होंने कयामत को झुठलाया है, आखरत को झुठलाया है, और इस वजह से ये जो है आखरत फरामोश है, इसलिए सबीलिल्लाह से ये हट गए हैं और ये शदीद अजाब में मुब्तिला होंगे। ये बड़ी खूबसूरत आयात हैं, बड़ा खूबसूरत वाकया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का, और इससे जो बात हमारे सामने अमल के लिए आती है वो ये है कि ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ख्वाहिश बड़ी खूबसूरत लगती है, जज्बा बड़ा बेहतरीन लग रहा होता है ना। और बहरहाल आपका ये जो था ना, आपको जो अल्लाह ने आजमाया था, वो आपकी कोई ख्वाहिश थी, बज़ाहिर वो बड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन कहा कि ए दाऊद ख्वाहिशात की पैरवी न करना, हक के मुताबिक फैसला करना, तू नायब है, मैं हूं असल हाकिम, और अगर तू इस पर चला तो सबीलिल्लाह से हट जाएगा, और बेशक वो लोग जो अल्लाह के रास्ते से हट जाते हैं तो उनके लिए शदीद अजाब है। अहले मक्का की भी ख्वाहिश थी ना कि नबी हमें बनाया जाता, है ना, इस तरह की बातें। तो कयामत को याद रखना चाहिए और आखरत की तैयारी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता करे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।